ओम शांति। राजयोग का प्रथम सत्र आज सुबह आप सभी ने किया और स्वयं का सही परिचय प्राप्त किया। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो पहले आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि अभी आप कहाँ हैं। तो दिल्ली जाने के लिए किस दिशा में जाना है ये आप निश्चित कर सकते हैं। राजयोग की यात्रा स्वयं से शुरू होती है। स्वयं का सही परिचय आप सभी ने प्राप्त कर लिया है। इस प्रथम लेसन से अगर तीन अभ्यास रोज बार बार आप करते रहेंगे तो बहुत जल्दी अपने आप को चेंज कर सकेंगे बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। वो तीन अभ्यास हैं, पहला आत्म स्मृति में रहना, उठते बैठते चलते फिरते कर्म करते हमें मन ही मन ये अवेयरनेस रहे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग। दूसरा अभ्यास आत्मा दृष्टि से हरेक को देखना। अब हमें देह दृष्टि से नहीं देखना, हमें स्पष्ट है शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूँ गलत कॉन्शियस में, मैं पुरुष हूँ ये गलत कॉन्शियस में, शरीर स्त्री है शरीर पुरुष है, मैं तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा। हमें हरेक को रूहानी दृष्टि से देखना है। और तीसरा अभ्यास है हम ये लक्ष्य रखें हर कर्म आत्म धर्म में स्थित होकर। और अब आपको पता है प्रत्येक आत्मा का धर्म है शांति और पवित्रता। हमारे असली गुण धर्म है शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। हमें हर कर्म शांति से, शुद्धि से, ज्ञान स्वरूप बनकर करना। हमें कोई भी कार्य गुस्से से, स्वार्थ से جلد بازی سے نہیں کرتا. اگر پرتی دن یہ تین ابھیاس بار بار آپ کرتے رہیں گے, بہت جلدی ہم آتما ابھیمانی بن سکتے ہیں. جیسے ہی آپ سول کانشیس بنیں گے, آپ کا نیچرل اٹینشن پرماتما کی اور جائے گا. پرماتما ہم آتماؤں کے پتا ہے, تو سمپل بات ہے, باڈی کانشیس رہیں گے تو دیہ کے متر سمبندھی یاد آئیں گے, سول کانشیس رہیں گے تو پرماتما کی یاد آئے. اب ہمیں یہ جاننے کی آوشکتا ہے کہ وہ پتا پرماتما کون ہے جس سے ہمیں بدھی یوگ لگانا ہے. ان کا صحیح پریچے کیا ہے؟ بے شک ہم سبھی پرماتما کو مانتے ہیں, پر یتھارتھ روپ سے جانتے نہیں. پرماتما جس کو ایشور, اللہ, گاڈ, خدا, پربھو پرمیشور کہہ کر ہم یاد کرتے رہے, اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پرماتما ایک ہے. ہم کہتے ہیں نا, گاڈ از ون, سب کا مالک ایک کہتے ہیں. اور یہ وویک کی بات بھی ہے کہ پرم سپریم اونچے سے اونچ الٹیمیٹ اتھارٹی ایک ہی ہو سکتی, دو نہیں ہو سکتی, انیک نہیں. جب پرماتما ایک ہے تو ان کا صحیح پریچے بھی ایک ہی ہونا چاہیے. پرماتما ایک ہے تو ان کا ستیہ پریچے بھی ایک ہی ہونا چاہیے. آج ایک پرماتما کے بارے میں انیک متے ہیں, انیک مانیتائیں, اتنے تک کہا جاتا ہے تنڈے تنڈے متیر بھننا, جتنے منہ اتنی باتیں. جس کو شری رام میں شردھا ہے وہ کہیں گے شری رام ہی بھگوان ہے, جن کو شری کرشن سے پیار ہے وہ شری کرشن کو ہی پرماتما سمجھ, کوئی نیچر کو گاڈ سمجھتے ہیں. چاروں اور پرکرتی کا جو اپار سوندریہ پھیلا ہے کہتے ہیں یہی بھگوان ہے. کوئی آتما کو پرماتما سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بھگوان کہلاتے ہیں, شیوو ہم برمو ہم کہتے رہتے ہیں, اپنے کو بھگوان کہلا کر اپنی پوجا کرواتے رہتے. کوئی سب میں پرماتما ہے ایسی بھاونا رکھتے ہیں, तेरे में, मेरे में, कण कण में, सब में परमात्मा है, ऐसी भावना रखते। एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं, अनेक मतें, ये अनेक मतें ही सिद्ध करती हैं हम परमात्मा को यथार्थ रूप से नहीं जानते। परमात्मा का सत्य परिचय स्वयं परमात्मा ही दे सकते। तो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम सभी आत्माओं को अपना सत्य परिचय दिया है। पहले हम उसकी व्याख्या को समझेंगे, सही अर्थ में परमात्मा किसको कह सकते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसकी परिभाषा है। मैं 5 बातें आपके सामने रखूंगी। उस परिभाषा से हम वेरीफाई करेंगे कि सही अर्थ में किसको परमात्मा कहें। सबसे पहली बात है, परमात्मा उसे कह सकते हैं जिसे सभी मान्य करें। कुछ लोग माने, कुछ ना माने, उसको परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा कोई एक धर्म, देश, जाति, समाज के पिता नहीं है, वो सारे विश्व के पिता, सर्व आत्माओं के परम पिता है। इसलिए परमात्मा का सही परिचय उसे कहेंगे जिसे संसार भर के प्रमुख सभी धर्म मान्य। दूसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होती। जो शरीर धारण करते हैं वे शरीर छोड़ते हैं। अब जो जन्म लेते हैं प्रकृति के बंधन में बंधते हैं। शरीर क्या है? प्रकृति है, 5 तत्वों से बना है। वो स्थल और काल के बंधन में बंधते हैं। जो जन्म लेते हैं कर्म बंधन में बंधते हैं। चैतन्य शक्ति आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर नहीं रह सकते। देखना, श्वास लेना, सोचना, ये भी तो कर्म है। जो जन्म लेते हैं देह संबंध में बंधते हैं। बच्चा पैदा होते ही पर्टिकुलर परिवार का सभ्य बन जाता है। वो किसी का बेटा है, भाई है, पोता है, संबंध में बंध जाता है। जो जन्म लेते हैं सुख दुख के बंधन में बंधते हैं। ये कर्म सिद्धांत है। इस कर्म क्षेत्र का सिद्धांत है, जो करेगा सो पाएगा। इसलिए परमात्मा उनको कह सकते हैं जो जन्म मरण के सुख दुख के देह संबंधों के कर्म के प्रकृति के बंधन से मुक्त है। इसलिए परमात्मा को सदा मुक्त सदा स्वतंत्र कहते हैं। और देखिए भक्ति में हम सभी भी भगवान से सदा क्या मांगते रहते हैं, हमें दुखों से छुड़ाओ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, हमें जन्म मरण के फेरे से छुड़ाओ। हम सदा परमात्मा से मुक्ति मांगते रहते अंडरस्टूड है। जो स्वयं मुक्त होगा वो ही तो हमें मुक्ति दे सके। तीसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जिसके ऊपर और कोई आत्मा नहीं है, वो ही परम सुप्रीम सर्वोच्च है, उनके ऊपर और कोई नहीं। उनके माता पिता शिक्षक गुरु स्वामी सेठ कोई नहीं, वो ही परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु है। उससे ही हम पिताओं का पिता शिक्षकों का शिक्षक गुरुओं का गुरु कहते, पतियों का पति नाथों का नाथ उससे कहते, वो ही अल्टीमेट फाइनल अथॉरिटी है, उसके ऊपर और कोई आत्मा नहीं। परमात्मा उससे कह सकते हैं जो सदा परम है, अपनी स्थिति में गुणों में कर्तव्यों में सदा परम है। ऐसे नहीं धीरे धीरे मध्यम हो जाएंगे अधम हो जाएंगे, नहीं। हम मनुष्य आत्माएं समय और प्रकृति के संसर्ग में आकर परिवर्तन को प्राप्त करते हैं। हमारे गुण स्थिति कर्म बदल जाते, परमात्मा सदा परम है। और पांचवी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सर्व ज्ञाता है और सदा दाता है। सर्व ज्ञाता है माना सब कुछ जानते हैं, ज्ञान के सागर है, सारे सनातन सत्यों को जानते हैं। इसलिए देखिए अनेक धर्मात्मा महात्मा योगी संत ऋषि मुनि होने के बावजूद भी हम परमात्मा को ही कहते हैं तमस्तोमा ज्योतिर्गमः। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, क्योंकि परमात्मा ही सारे सनातन सत्यों का ज्ञान देते हैं। नॉलेजफुल है, ज्ञान के सागर है, इसलिए परमात्मा को हम सर्वज्ञ कहते हैं। मनुष्य आत्माओं के लिए क्या कहते हैं? मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ है, उनके पास लिमिटेड नॉलेज है। मनुष्य आत्माएं जानती हैं और भूल जाती हैं। हम स्मृति विस्मृति को पाते रहते हैं और परमात्मा सदा दाता है, सदा दाता है। ऐसे नहीं है हम मांगेंगे तो देते। वो सदा दाता है, शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सदगति दाता कहते हैं। वो सदा देते हैं। हम मनुष्य आत्माएं सदा दाता नहीं है। देखो अपने आप, हाँ, हम सदा दाता है नहीं। बेशक हम मनुष्य आत्माएं पहले दाता थी, हम देवता थे, देवी देवता मीन्स दाता। इसलिए आप देखिए देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते, दाता वरदाता। पहले हम देवता थे, समय प्रकृति के संसर्ग में आते आते आज हम देवता नहीं रहे हैं। आज क्या बन गए हैं? लेवता। आज हम लेवता बन गए, लेने वाले। हमें चाहिए चाहिए चाहिए, हम निष्काम भाव से नहीं कर पाते। परमात्मा सदा दाता है, तो परमात्मा के सत्य परिचय की इस परिभाषा की पांचों ही बातें बुद्धि में रख कर अब आप विवेक से सोचिए, सही अर्थ में किसको परमात्मा कहें? परमात्मा सत्य है, केवल भावना की बातें नहीं। भावना से हम तो सबको भगवान समझते हैं, पर विवेक से सोचिए क्या आप और मेरे जैसे साधारण मानव शरीरधारी आत्माओं को परमात्मा कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहले अपनी बुद्धि में ये सत्य पक्का कर लीजिए कि कोई भी शरीरधारी को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा की याद से महात्मा बन सकते हैं, धर्मात्मा देवात्मा बन सकते हैं, पर परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा कोई बनता नहीं है, परमात्मा कोई पोस्ट पोजीशन या डिग्री नहीं है जो कोई मेहनत करके ले ले। परमात्मा कोई बनता नहीं है, अनादि रूप से एक परम आत्मा है ही, नए कोई परमात्मा बनते नहीं जाते। इसलिए जन्म मरण के चक्र में आने वाली कोई भी मानव देहधारी आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। ठीक है, अंडरस्टूड है। दूसरी बात, जो भी साधु सन्यासी ऋषि मुनि गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत जो भी हैं, हम उनको महात्मा कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा का सत्य परिचय ना होने के कारण कोई थोड़ी भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, लोग उनको ही भगवान समझने लगे। लेकिन परमात्मा कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं दिखाते। तो ये महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। हम तो कोई न कोई महात्मा के चरणों में जाते हैं और समझते हैं कि वो हमारी जीवन नैया को पार करते हैं। वो महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। जो भी धर्म स्थापक इस संसार में हुए हैं, कौन कौन हुए हैं, कौन कौन धर्म स्थापक हुए हैं, जिन्होंने सृष्टि पर आकर अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया, चाहे इस्लाम के आदि पितामह, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी, तीनों के पितामह अब्राहम है, मोहम्मद पैगंबर है, गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, गुरु नानक जी है, क्राइस्ट है, शंकराचार्य जी है। ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। इन धर्म स्थापकों ने स्वयं सही ही कहा है, हम उस गॉड के मैसेंजर, हम उस खुदा के पैगंबर हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं। इन धर्म स्थापकों ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, ये उनके फॉलोवर्स होते हैं जो समय बीतने पर उस परम शक्ति परमात्मा को भूल जाते हैं और अपने धर्म स्थापक में ही सीमित हो जाते हैं। ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। और चौथी बात, बहुत निष्पक्ष भाव से और विवेक से हमें समझनी है कि हिंदू भाई बहने जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, कितने देवी देवताओं को मानते हैं, कितने, हाँ, 33 करोड़। जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, वो देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। इसलिए देखिए, इन देवी देवताओं को सभी धर्म मान्य नहीं करते। हम इन देवी देवताओं के जन्म की, जीवन की, कईयों के मृत्यु की पूरी गाथाएं बताते हैं, कथाएं सुनाते हैं। हम इन देवी देवताओं के माता पिता, बंधु, गुरु, सखा, पत्नी, बच्चे बताते, संबंधों में बंधे हुए थे। हम इन देवी देवताओं को श्रेष्ठ कर्म करते हुए दिखाते कि वे आए ही असुरों का संहार करने, दुखियों को सुखी बनाने, नरक को स्वर्ग बनाने। हम उनको श्रेष्ठ कर्म करते हुए बताते और इन कर्मों के फल स्वरूप उन्हें दैवी राजाई करते हुए बता। हर देवी देवता के मस्तक पर रत्न जड़ित स्वर्ण ताज दिखाते, सुवर्ण सिंहासन पर बैठे हुए दिखाते। ये राजाई की निशानी है। हम उन्हें स्वर्गिक सुखों को भोगते हुए दिखाते। जो भोगता है उसे परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा की महिमा में विशेष कौन से विशेषणों का हम प्रयोग करते हैं? परमात्मा के लिए हम कहते हैं वे अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, निराकार निरंजन उसे हम कहते हैं। तो ऐसा कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्मों को मान्य है, जिनके कोई माता पिता गुरु नहीं दिखाए हैं, जिनको स्वयं भू कहा गया है, ऐसा कौन सा स्वरूप है? कोई स्वरूप जो सभी धर्मों को मान्य, तो देखिए मुंझने की बात नहीं। परमात्मा शब्द ही परमात्मा का परिचय देता है। परमात्मा को जानना सबसे सहज है। परमात्मा मीन्स परम आत्मा। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। एक मनुष्य का पिता कैसा होता है, किस आकार का होता है? मनुष्य होता है। एक जानवर का पिता जानवर है, पंछी का पिता पंछी। हम ज्योति बिंदु आत्माओं का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा रूप से परम नहीं है, परमात्मा अपने गुणों कर्तव्यों से परम ऊंचे से। जैसे हम महात्मा कहते हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि वो आत्मा इतनी मोटी है। हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं और वो इतनी मोटी आत्मा है, नहीं। हम भी ज्योति बिंदु आत्मा है, वो भी ज्योति बिंदु आत्मा है, पर जो आत्मा गुण और कर्म से महान होते हैं उनको हम महात्मा कहते हैं। जो गुण और कर्म से दिव्य है उसे देवात्मा कहते हैं। जो गुण और कर्म से पतित भ्रष्ट है उनको पापात्मा कहते हैं, पर है तो सभी ज्योति बिंदु आत्मा। परमात्मा रूप से ज्योति बिंदु स्वरूप है। और इस चित्र में आप देखिए विश्व के सभी धर्मों को ये मान्य है। हिंदू भाई बहने ज्योति बिंदु परमात्मा को ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। जानते हो ना भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। ज्योति बिंदु परमात्मा का भक्ति में पूजन के लिए जो प्रतीक बनाया गया उससे ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है। रामेश्वर में श्री राम को भी ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हुए बताते हैं। वृंदावन गोपेश्वर में आप जाएंगे, श्री कृष्ण को भी शिव के आगे नमन करते हुए दिखाया है। एक और समझने की बात आपको बताएं, स्वयं शंकर जी को भी शिवलिंग के आगे ध्यान अवस्था में बैठे दिखाए, देखे हैं ना ऐसे चित्र। आगे शिवलिंग है और शंकर जी को तपस्वी मूर्त भी बताया है। शंकर जी तपस्या करते हैं, मीन्स उनके भी ऊपर कोई परम शक्ति है। परमात्मा को तो कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हम शंकर जी को कहते ही हैं योगी तपस्वी, इसलिए शंकर जी स्वयं देवता है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव रचयता ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा है। इसलिए ज्योतिर्लिंग पर देखो तीन रेखा करके ऊपर बिंदु करते हैं, त्रिदेव रचयता निराकार ज्योति बिंदु पर। तो भारत में अमरनाथ, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, इवन नेपाल में पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग को पूजा जाता है। मुस्लिम भाई बहने स्पष्ट कहते हैं अल्लाह नूर है। नूर मीन्स नूर माना प्रकाश। हम हिंदी में कहते हैं परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वे अपनी अरबी भाषा में कहते हैं अल्लाह नूर है। वे स्पष्ट कहते हैं नूरे इलाही। परमात्मा ये भौतिक प्रकाश बिंदु नहीं है, इलाही मीन्स अलौकिक अभौतिक दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। क्राइस्ट ने भी स्पष्ट कहा है गॉड इज लाइट, आई एम ए सन ऑफ गॉड। उन्होंने अपने आप को भगवान नहीं कहा। जापान के बौद्धिस्ट भाई बहने, विशेषकर महायान पंथी बौद्धिस्ट, परमात्मा के दिव्य ज्योति स्वरूप को मानते हैं। शिवलिंग आकार का प्रतीक ही सामने रखते हैं, उनसे ध्यान केंद्रित करते हैं। गौतम बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, तपस्वी रूप में दिखाते हैं। वो किसके ध्यान में बैठे, किससे बुद्धत्व मिला, वो है परम चैतन्य शक्ति परमात्मा, जिससे सद्ज्ञान मिलता है, अवेयरनेस आती है, आत्मा जागृत होती है। गुरु नानक जी ने तो एक निराकार की ही महिमा की है, एक ओंकार निराकार सतनाम कर्ता पुरुष अकाल मूर्त, एक की ही महिमा कही। विश्व के जितने भी मुख्यतः धर्म हैं, इन धर्मों के आदि धर्म स्थापक हैं, उन सबका मूल इशारा एक ही है कि परमात्मा एक है, निराकार दिव्य ज्योति बिंदु। उनको हमारे जैसा शारीरिक प्राकृतिक आकार नहीं है, इसलिए हमारी कंपैरिजन में उनको निराकार का है। उनका अपना दिव्य आकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको हमारे जैसा शरीर नहीं है, इसलिए हमारे जैसा शारीरिक नाम नहीं, संज्ञावाचक नाम नहीं। हमारे नाम शरीर से है ना, मेरा ये शरीर छूट जाए तो मेरा नाम भी तो समाप्त हो जाएगा। मैं नया शरीर लूंगी, मुझे नया नाम मिलेगा। हमारे नाम शरीर से, परमात्मा का नाम गुणों से है, कर्तव्यों से। वो सारे विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए उनका मूल नाम शिव है। शिव मीन्स, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। हम कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा सत्य है, अविनाशी है। शिव कल्याणकारी है, सुंदर, सदा पावन है। भक्ति में उनके अनेक गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है, हम उससे महाकालेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, ओमकारेश्वर, मुक्तेश्वर कहते हैं। हम उससे भोलानाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ कहते हैं। ये उनके अनेक गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम। हमें नामों की लिस्ट को रटने की जरूरत नहीं है, हमारा मतलब परमात्मा के गुण और कर्तव्य से है, इसलिए हम उनको मूल नाम से याद करते हैं, कल्याणकारी शिव, जिसको प्यार से यहाँ हम शिव बाबा कहते हैं। बाबा मीन्स, बाबा माना पिता, शिव पिता, शिव बाबा। बाबा माना कोई साधु बाबा की बात नहीं है, बाबा मीन्स पिता। परमात्मा हमात्माओं के पिता है, हमारे लिए सबसे गर्व और खुशी की बात है हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे। हमें खुशी है, देखो एक भी नहीं बोलता है, कितना आश्चर्य है। एक ऑफिसर, डॉक्टर, मिनिस्टर के बेटे को नशा होता है, मेरे पिता ऑफिसर मिनिस्टर है, पता है मैं किसका बेटा हूँ, और हमें खुशी नहीं है हम भगवान के बच्चे, क्योंकि हम अपने पिता को जानते नहीं है, हमारा उनसे प्रैक्टिकल कोई रिलेशन नहीं रहा, इसलिए हमें खुशी भी नहीं है, गर्व भी नहीं। जब हम अपने आप को आत्मा समझकर उस पिता परमात्मा से जीवन जोड़ते हैं, मन वचन कर्म से फॉलो करते हैं, तो हमें प्राप्ति भी होती है, अनुभूति भी होती है, हमें खुशी रहती है, विल पावर हमारे में। जिस पिता परमात्मा की हम कितनी महिमा करते हैं, भक्ति में गाते हैं ना, तेरी महिमा अपरंपार, ऐसी अपार महिमा के धनी, ज्ञान गुण शक्तियों के सागर और सदा दाता परमात्मा के हम बच्चे। सोचिए हम कैसे होने चाहिए, हम कैसे होने चाहिए। कभी अपने आप पर विचार चलता है, प्रश्न होता है कि पिता परमात्मा शांति के सागर, शांति दाता है और उनके हम बच्चे अशांत क्यों हैं? कभी सोचते हैं? पिता दुख हरता सुख करता है और उनके हम बच्चे दुखी क्यों हैं? पिता सदा पावन है और हम पतित भ्रष्ट क्यों हैं? क्योंकि हमारा उनसे योग नहीं, हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, इसलिए प्राप्तियां भी नहीं। हम मानते हैं पर जानते नहीं हैं। जानने के बाद फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर परमात्मा कोई अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते, वो तो मनुष्य गुरु भी कर सकते। परमात्मा वो कार्य करते हैं जो कोई मनुष्य आत्माएं नहीं कर सकती। परमात्मा का दिव्य कार्य कौन सा है? वे हमें पतित से पावन बने। जब सारा विश्व विकारों के पंजे में फंस जाता है, हर मनुष्य आत्मा पतित भ्रष्ट बन जाते हैं, तब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, सद ज्ञान का प्रकाश देते हैं, हमें पतित से पावन। वे हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। आज हम मनुष्य भी नहीं रहे हैं, कहते हैं ना, जानवर से भी बदतर हैवान बन गए, कहते हैं शरीर से मानव है पर आत्मा में मानवता के गुण नहीं। भाइयों और बहनों, देवताएं कोई ऊपर नहीं रहते हैं, वो कोई काल्पनिक नहीं है। असुर कोई पाताल में नहीं रहते हैं, वो कोई अलग योनि के भयानक प्राणी नहीं। हम मनुष्य आत्माएं ही देवता थे, दिव्य गुणों से संपन्न थे। 3 मिनट शिव बाबा को याद। परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है कि जब हम अपनी पवित्रता और दिव्य गुण गंवा देते हैं और अनेक प्रकार की बुराइयां, विकार, अवगुण जीवन में धारण कर लेते हैं, हम ही असुर बन जाते हैं। परमात्मा आकर हमें सत्य ज्ञान, योग और पवित्रता की शक्ति से पति से पावन, मनुष्य से देवता बनाते, सारे विश्व को स्वर्ग बनाते। हम बदलेंगे, जग बदले। हम देवता थे, संसार स्वर्ग था। हम पतित बन गए, संसार नरक बन गए। परमात्मा आकर सारी कलियुगी पतित दुनिया को सतयुगी पावन दैवी सृष्टि में बदलते हैं। विश्व परिवर्तन, विश्व पिता परमात्मा ही कर सकते, और ऐसा कर्तव्य करने के लिए स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। जरूर परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, विश्व कल्याण का कार्य करते हैं, तब तो हम उससे याद करते हैं, तब तो हम उससे बुलाते हैं, पुकारते हैं। तो परमात्मा सृष्टि पर कब आते हैं, कब आते हैं, सभी भारतवासी जानते हैं। कौन सा श्लोक बोलते हो? देखो, सभी भारतवासी जानते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं। अधर्मों का अंत करने सतधर्म की स्थापना कर, दुष्कृत्य करने वालों का नाश करने, सत्कर्म करने वालों की रक्षा के लिए वो स्वयं सृष्टि पर आते हैं, ये आप जानते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, जब जब माना कब, कहते हो ना जब जब धर्म की ग्लानी होती, जब जब माना कब होती, एग्जैक्टली कब होती, कलयुग का अंत, कलयुग अंत का समय अति धर्म ग्लानी का समय, न कि सतयुग अंत, न कि त्रेता अंत, न कि द्वापर अंत, कलयुग अंत अति धर्म ग्लानी का समय। इसलिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संधि काल संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं, युगे युगे आते तो कलयुग कैसे हुआ? फिर परमात्मा ने आके क्या किया? परमात्मा युगे युगे नहीं आते, कलयुग अंत सतयुग आदि के संधि काल संगम युग में आते। भाइयों और बहनों, वर्तमान समय ही कलयुग अंत का समय है। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का समय, जब स्वयं परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की रचना। आप सब किस में आए हैं? ज्ञान यज्ञ में आए। यहाँ ज्ञान की बातें, यहाँ कोई द्रव्य यज्ञ मटीरियल यज्ञ की बात नहीं है, जौ घी तिल होमने की बात नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ है। हमें ज्ञान को समझना है। जो कलयुगी नर नारी इस ज्ञान यज्ञ में आकर खुद की बुराइयों को स्वाहा करेंगे, वे सतयुग के लायक देवी देवता। कौन कौन देवी देवता बनना चाहेगा? खुशी से हाथ ऊपर करो, एक दो को देख के नहीं। देवता बनने की बात है ना, कोई बुरी बात मैं नहीं कह रही, भाई भ्रष्टाचारी बनो, पापी बनो, मैंने ऐसे तो नहीं कहा ना। मैंने तो कितनी अच्छी बात की, मनुष्य से कौन कौन देवता बनेंगे, तो सबको खुशी से हाथ ऊपर करना चाहिए ना। फिर से करो, बहुत अच्छा। आप खुद के लिए ताली बजाएं, स्वयं को महान बनाने की बात है, और स्वयं परमात्मा उसके लिए हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, योग सिखा रहे हैं। हमें अपनी बुराइयों को इस ज्ञान और योग के बल से भस्म करना, रोज ज्ञान योग करते रहेंगे अपने आप बुराइयां खत्म हो जाती। इसलिए वर्ल्ड साइकिल में, संसार खेल में वर्तमान समय जो चल रहा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है। स्वयं भगवान हमें पवित्र योगी बनाने आए, इसलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं कर, देखेंगे सोचेंगे करेंगे नहीं, अभी हमें स्वयं दृढ़ संकल्प करना है और अपने आप को पवित्र योगी दिव्य बना। और लास्ट बात, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं, मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ, परमात्मा इस दुनिया में नहीं रहते हैं। आप यहाँ हाजिर हैं तो मैं थोड़ी कहूंगी आप आएंगे, आप है ही हैं। परमात्मा इस दुनिया में ही होता तो हम क्यों कहते हैं कि वे अवतरित होते हैं। परमात्मा को जब हम याद करते हैं हमारी नजर और बुद्धि कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। हम कहते ही हैं ऊपर वाला, यहाँ वाला नहीं ऊपर वाला। हम उसकी महिमा गाते हैं, ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा काम। आज सुबह प्रथम लेसन में आप सभी ने समझा है कि ये दुनिया हम आत्माओं का भी घर नहीं, हम आत्माएं भी कहां की निवासी हैं, परमधाम के निवासी। अज्ञान काल में भी आप कहते थे ना, अकेले आए हैं अकेले जाना है, मीन्स ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ये घर नहीं। जब हम आत्माएं इस दुनिया की निवासी नहीं हैं, तो परमात्मा इस दुनिया का निवासी कैसे हो सकता है। जो हम आत्माओं का असली घर है, चित्र में सबसे ऊपर गोल्डन रेड कलर से दिखाया है, अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व, हम उस ब्रह्मलोक के निवासी। जो हम आत्माओं का असली घर है वो ही हमारे पिता का भी असली घर है, परमात्मा भी परम धाम के निवासी। इसलिए हम आत्माएं भी परम धाम के निवासी। दुनिया में भी देखो, बाप और बच्चों का घर एक ही होता है या अलग अलग होता है, हाँ? असली घर एक ही होता है ना, बाद में अलग अलग होते हैं पर असली घर तो एक ही होता है ना। तो जो हमारे पिता परमात्मा का असली घर है परमधाम, वो ही हम आत्माओं का भी असली घर है, परमात्मा परमधाम निवासी। ये है परमात्मा का सत्य परिचय, जो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को बताया है। ऐसे कल्याणकारी सुखदाता हम सर्व आत्माओं को पावन बनाने वाले हमारे अविनाशी साथी पिता परमात्मा को हमें कितना याद करना है बताइए, कितना याद करना चाहिए। जो थोड़ा ही सुख देते हैं बाकी कदम कदम दुख ही देते रहते हैं, उन मित्र संबंधियों को कितना याद करते हाँ। तो जो सदा सुख देते हैं उस शिव बाबा को हमें कितना याद करते। पर हम देह अभिमान में आ जाते हैं, देह के मित्र संबंधों को याद करते रहते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। इसलिए खुद को आत्मा निश्चय कर पिता परमात्मा को याद करना है। तो हम सभी 3 मिनट शिव बाबा की याद में बैठेंगे। आज इस सत्र के बाद आप सबको गिफ्ट देनी है, इसलिए हम कम समय शिव बाबा की याद में बैठेंगे। सभी यथार्थ विधि से सही परिचय से शिव बाबा को याद। अब तक आप अपनी अपनी भावना अनुसार अपनी मान्यता अनुसार परमात्मा को याद करते रहे, अब हम शिव बाबा को सही परिचय से, वो जो हैं जैसे हैं जहां रहते हैं वहां मन बुद्धि लगाकर उसे याद। बहुत सुंदर शिव बाबा की महिमा का गीत बजेगा, हम साइलेंस में बैठकर गीत संगीत के साथ साथ अपने मन बुद्धि को शिव बाबा की याद में एकाग्र करें। सभी व्यवस्थित बैठ जाएं, आंखें खुली हों, बुद्धि से परम धाम में पहुंचे, परम ज्योति बिंदु बाबा को मन की आंख से देखें और याद। ओम
तू परम आत्मा जग का आधार है। केवल